नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने विमान ईंधन की कीमतों में कमी के बाद बृहस्पतिवार से ईंधन शुल्क वसूलना बंद करने की घोषणा की है। इससे कुछ लंबे मार्गों पर हवाई किराए में 1,000 रुपये तक की कमी आएगी। एयरलाइन ने ATF की कीमतों में उछाल के बाद 6 अक्टूबर 2023 से ईंधन शुल्क वसूलना शुरू किया था। दूरी के आधार पर ईंधन शुल्क की मात्रा 300 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक तय की गई थी। अपने परिचालन का विस्तार कर रही एयरलाइन ने कहा कि एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में हालिया कटौती के बाद 4 जनवरी से विमान टिकट पर ईंधन शुल्क हटा दिया गया है। इंडिगो की ओर से जारी बयान के अनुसार ATF की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहता है, इसलिए हम कीमतों या बाजार स्थितियों में किसी भी बदलाव से निपटने के लिए अपने किराए और उसके घटकों को समायोजित करना जारी रखेंगे। ईंधन किसी एयरलाइन के परिचालन लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंडिगो ने पिछले साल ATF की कीमतों में बढ़ोतरी की भरपाई के लिए ईंधन शुल्क लगाने की घोषणा की थी। ये कदम उठाने वाली वो पहली विमानन कंपनी थी। यदि उड़ान की दूरी 500 किलोमीटर तक हो तो प्रत्येक यात्री से 300 रुपये का ईंधन शुल्क लिया जाता था और 501 से 1000 किलोमीटर की दूरी के लिए ये राशि 400 रुपये थी। ईंधन शुल्क 1001 से 1500 किलोमीटर के लिए 550 रुपये, 1501 से 2500 किलोमीटर के लिए 650 रुपये और 2001 से 3500 किलोमीटर के लिए 800 रुपये था। वहीं 3501 किलोमीटर तथा उससे अधिक के लिए ये राशि 1000 रुपये थी। ईंधन शुल्क हटने से इंडिगो की विमान टिकट की कुल कीमत कम से कम 300 रुपये से 1000 रुपये तक कम हो जाएगी। स्मार्टफोन विनिर्माता कंपनी वीवो ने वीवो X100 श्रृंखला के फ़ोन पेश करने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। कंपनी का लक्ष्य प्रीमियम खंड में अपनी उपस्थिति मजबूत करना है। वीवो की ओर से जारी बयान के अनुसार नई X100 सीरीज में X100 Pro और X100 शामिल हैं। ये ZEISS कैमरे से लैस हैं और इसकी कीमत 63,999 रुपये से अधिक होगी। वीवो इंडिया के उत्पाद प्रबंधन प्रमुख विकास टेगरा ने कहा कि X100 श्रृंखला उपभोक्ताओं को बेहतरीन मोबाइल फोटोग्राफी अनुभव प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। X100 Pro 89,999 रुपये में उपलब्ध होगा, जबकि X100 63,999 रुपये और 69,999 रुपये में उपलब्ध होगा। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, वीवो देश में प्रीमियम खंड में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहती है। प्रवक्ता ने कहा कि वीवो इस साल के शुरुआत में नोएडा में नई सुविधा में उत्पादन शुरू करने की प्रक्रिया में है। वर्तमान में वीवो की ग्रेटर नोएडा में विनिर्माण इकाई है, जहां सालाना करीब 6 करोड़ फोन का विनिर्माण होता है। कंपनी ने प्रमुख कार्ड सेवा प्रदाताओं के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर बिना अतिरिक्त लागत के मासिक किस्त की सुविधा और कैशबैक ऑफर की भी घोषणा की है। विविध कारोबार से जुड़े टोरेंट समूह की कंपनी टोरेंट पावर ने नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और बिजली वितरण में 47,350 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए गुजरात सरकार के साथ 4 शुरुआती समझौते किए हैं। कंपनी ने बुधवार देर रात जारी बयान में कहा कि टोरेंट पावर लिमिटेड ने वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण के तहत गुजरात सरकार के साथ 4 गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गांधीनगर में टोरेंट पावर और गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों के जरिए कंपनी ऊर्जा क्षेत्र में कुल 47,350 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। टोरेंट समूह के चेयरमैन समीर मेहता ने बयान में कहा, टोरेंट समूह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ अपनी योजनाओं को जोड़कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत टोरेंट पावर ने अपने भविष्य के निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नवीकरणीय उत्पादन, पंप भंडारण, पन बिजली परियोजनाओं, हरित हाइड्रोजन, अमोनिया उत्पादन तथा बिजली वितरण जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लगाने का लक्ष्य रखा है। इन 4 MOU में बनासकांठा, जामनगर, पाटन और सुरेंद्रनगर जिलों में स्थापित की जाने वाली 3,450 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं और 1,045 मेगावाट की हाइब्रिड बिजली परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें 30,650 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। दूसरे MOU में बनासकांठा जिले में स्थापित होने वाली 7,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए सौर पार्क के बुनियादी ढांचे के विकास में 45,000 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। तीसरा समझौता ज्ञापन बनासकांठा में 7,200 करोड़ रुपये के कुल प्रस्तावित निवेश के साथ 100 KTPA की क्षमता वाली हरित हाइड्रोजन अमोनिया उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए है। वहीं चौथा समझौता ज्ञापन अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत जैसे शहरों में टॉरेंट पावर के बिजली वितरण कारोबार में 5,000 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को तुअर दाल खरीद मंच पेश किया और कहा कि दिसंबर 2027 तक देश को दालों में आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जनवरी 2028 से 1 किलोग्राम दाल भी आयात नहीं करेंगे। इस मंच पर किसान पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य या बाजार मूल्य पर NAFEED और NCCF को बेच सकते हैं। शाह ने कहा कि भविष्य में उड़द और मसूर दाल के किसानों के साथ साथ मक्का किसानों के लिए भी इसी तरह की सुविधा शुरू की जाएगी। मंत्री ने मंच के माध्यम से तुअर की बिक्री के भुगतान के लिए 25 किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए करीब 68 लाख रुपए हस्तांतरित भी किए। सहकारी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड बफर भंडारण बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से दालों की खरीद का काम करते हैं। मंत्री ने कहा कि बुआई से पहले तुअर किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर NAFEED और NCCF को अपनी उपज बेचने के लिए मंच पर पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजीकृत तुअर किसानों के पास NAFEED, NCCF या खुले बाजार में बेचने का विकल्प होगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।